अभिमन्यु इशिका से बात करना चाहता था, इसलिए वो उसे बीच रास्ते से किडनैप करके अपने साथ एक फार्म हाउस में ले गया था। हालांकि इशिका उसकी इस हरकत पर काफी चिढ़ गई थी और पूरे रास्ते उसे ठीक से बात नहीं कर रही थी। फार्म हाउस पहुंचने के बाद भी इशिका ने अभिमन्यु से बात नहीं की। वो अभी भी तलाक देने की जिद पर अड़ी हुई थी। इशिका अपने दिल की बात रखकर वहां से जाने लगी, तभी अभिमन्यु ने पीछे से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर इशिका ना चाहते हुए भी वहां से नहीं जा पाई। अभिमन्यु ने उसे 11 कहकर बुलाया था और कुछ ऐसी बातें कहीं जो इशिका और उस लड़के के बीच में हुई थी जो उसे बचपन में मिला था। इशिका की बात सुनकर इशिका उसकी तरफ पलटी, उसकी आंखें नम थीं। तभी उसने देखा अभिमन्यु अपनी पॉकेट में हाथ डालकर कुछ टटोल रहा था। अचानक उसने एक रिंग का बॉक्स बाहर निकाला। अभिमन्यु इशिका के सामने आया और अपने एक घुटने के ऊपर बैठते हुए प्रपोज करने के स्टाइल में वो रिंग निकालकर इशिका के सामने कर दी थी। इशिका उस अंगूठी को देखकर हैरान हो गई थी, क्योंकि ये वही अंगूठी थी जो उसने फिर से उस लड़के को लौटाई थी। अभिमन्यु ने इशिका की आंखों में देखते हुए अपनी इंटेंस वॉइस में कहा, ये तुम्हारी ही है, हमेशा से इस पर तुम्हारा हक था। अगर इस पर तुम्हारा हक नहीं भी होता या तुम वो लड़की नहीं भी होती जो मुझे बचपन में मिली थी, फिर भी मेरा दिल तुम्हारे अलावा किसी और को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता था। अब समझ आ रहा है कि पहले दिन से ये तुम मुझे क्यों अट्रैक्ट कर रही थी। शायद वो बचपन का कनेक्शन था जो हमें एक दूसरे से जोड़ रहा था। इशिका के सामने अपनी दिल की बात रखते हुए अभिमन्यु ने उसे वो रिंग पहना दी थी। उसके बाद अभिमन्यु खड़ा हुआ। इशिका की आंखों के सामने एक बार वो सारे दृश्य घूम गए थे जब वो बचपन में पहली बार अभिमन्यु से मिली थी। अभिमन्यु का उसकी केयर करना, अलग होने पर उसे ढूंढकर उसे शादी करने का वादा, और फिर बाद में एक अननोन हस्बैंड के तौर पर उसके सामने आना। इशिका ने धीमी और भारी आवाज में पूछा, तुम इन सबके बारे में कब से जानते हो और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं वो लड़की हूं तो फिर प्रणाली कौन है? इशिका के दिल में इस वक्त काफी सवाल उठ रहे थे, पर उसके शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। इशिका को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़के के आने की उम्मीद ने उसे जिंदा रखा, हर एक मुश्किल से लड़ने का सहारा दिया, वो कोई और नहीं अभिमन्यु ही था। इशिका की आंखों से बह रहे आंसुओं को अभिमन्यु ने अपने अंगूठे से साफ किया और फिर उसके गाल को सहलाते हुए कहा, जब तुमने मुझे वो लेटर और रिंग भेजा था तभी मुझे पता चल गया था। अगले दिन मैंने तुम्हें कोर्ट में जल्दी बुलाया था, सोचा तुम्हें प्रपोज करके सब बताऊंगा, लेकिन अचानक ही तुम्हारी मरने की खबर मिल गई। मैं तुम्हें बताना चाहता था पर वक्त और हालात दोनों ही साथ नहीं दे रहे थे। इशिका ने उसकी बात पर सिर हिलाया और अभिमन्यु को खुद के सीने से लगा लिया था। इशिका इस लम्हे में खो जाना चाहती थी, उसकी आंखें बंद थीं। आज उसे अभिमन्यु की बाहों में हमेशा से ज्यादा सुकून मिल रहा था, वही सुकून जो बचपन में जब अभिमन्यु उसे हक करता था तब महसूस होता था। अभिमन्यु की बाहों में इशिका किसी बच्चे की तरह दुबकी हुई सिसक रही थी। अभिमन्यु बस बिल्कुल धीरे धीरे उसके बालों को सहला रहा था, वो उसके इमोशंस को समझ सकता था। पहली बार जब अभिमन्यु को पता चला था तो उसकी हालत भी कुछ यही थी। उसका मन भी कर रहा था कि वो जाकर इशिका को गले लगा ले और उसे सब सच बताए। उन दोनों के बीच एक खामोशी छाई हुई थी। इशिका ने उस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें कितना मिस किया था, हमेशा यही उम्मीद करती थी कि तुम मुझे लेने के लिए आओगे। मैं उस वक्त शादी का मतलब नहीं समझती थी, पर ना जाने क्यों दिल में यही उम्मीद थी कि बड़े होने पर तुम मुझे ढूंढकर मुझसे शादी जरूर करोगे। हाँ, मैंने तुम्हें ढूंढा था, पर गलती से गलत लड़की मेरी नजरों में आ गई। प्रणाली मेंटली सिक थी और उसे यही लगता था कि वही वो लड़की है जिसने मुझे बचपन में बचाया था, मेरी हेल्प की थी। मैंने उस अंगूठी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसके पेरेंट्स ने उसे बेच दिया है, अभिमन्यु ने शांत लहजे में कहा। प्रणाली का जिक्र आते ही इशिका अभिमन्यु से अलग हुई, उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसने अभिमन्यु से पूछा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, आखिर प्रणाली को सब कैसे पता हो सकता है? मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया और तुमने भी नहीं बताया होगा, फिर वो मेरी जगह कैसे ले सकती है? अभिमन्यु, तुम्हें याद है उस ग्रुप में एक छोटी सी गंदी लड़की हुआ करती थी जो अक्सर हमारे पास आने की कोशिश करती थी? उन बच्चों में सबसे ज्यादा डर्टी वही रहती थी, वो प्रणाली थी। उसने हमें करीब से देखा था, हमारे रिश्ते को जाना था। उस दिन जब हम अलग हो रहे थे तब भी वो हमारी तरफ देख रही थी। मेरा यकीन करो, मैंने इतनी आसानी से उसकी बातों पर यकीन नहीं किया था। मैंने उसके सारे टेस्ट करवाए थे और उसने वो क्लियर किए थे। उसे एक बीमारी है जिसके चलते उसे भ्रम होते थे और इसी वजह से हम उसे पकड़ नहीं पाए। हमेशा से उसे यही लगता था कि वो इशिका, 11 है। उसने मुझे बचाया है, बस उसी का फायदा उठाया उसने। मैं इतने सालों से उसके साथ जरूर था, लेकिन कभी मुझे वो कनेक्शन फील नहीं हुआ जो तुम्हारे साथ होता था। अभिमन्यु ने इशिका को सारी बातें समझा दी थी कि कैसे प्रणाली उसे इतने सालों से धोखा दे रही थी। वो अभिमन्यु को ही नहीं, खुद को भी धोखे में रख रही थी। अपनी बात खत्म करने के बाद अभिमन्यु ने इशिका के चेहरे को अपने हाथों में भरा और कहा, मुझे उससे पूरी सिंपथी है, मैं उसका ट्रीटमेंट भी करवाऊंगा, पर उसके धोखे को जानने के बाद मैं उससे दोस्ती का रिश्ता भी नहीं रख सकता हूँ। और यकीन करो, अगर तुम वो लड़की नहीं भी होती तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी जगह कभी कोई नहीं ले सकता, ना बचपन में ले सकता था और ना ही अब। ये सच था कि बचपन की सच्चाई सामने आने के बाद इशिका और अभिमन्यु का रिश्ता और भी स्ट्रांग हो गया था, पर सच में अभिमन्यु को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था। वो तो इशिका को पहले से ही सच्चे दिल से बेहद मोहब्बत करने लगा था। इशिका ने उसकी बात पर हामी भरी। अचानक अभिमन्यु के चेहरे पर एक टीजिंग स्माइल आ गई। उसने इशिका को परेशान करते हुए कहा, हाँ तो कोई मुझसे अलग होने की बात कह रहा था, यहाँ से बिना मेरी बात सुने जाना चाहता था। उसकी इस हरकत पर इशिका ने उसके कंधे पर हल्के से मारते हुए कहा, मिस्टर अभिमन्यु राजवंश, आपके ऊपर ये क्यूट लवर वाला एटीट्यूड बिल्कुल सूट नहीं करता है। अगर गाड़ी में ही सब बता देते तो भी यहाँ आने के लिए मान जाती, पर किसी को अपनी जिद करनी थी, बिल्कुल बचपन की तरह, जिद्दी बंदर कहीं के। हे, मुझे इस नाम से मत बुलाओ, अब तो तुम मेरा नाम जानती हो, अभिमन्यु ने मुंह बनाकर कहा। मैं आपको इसी नाम से बुलाऊंगी मिस्टर राजवंश, इशिका उसे चिढ़ाते हुए बोली। अचानक ही इशिका के चेहरे के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए थे। उसने अभिमन्यु की आंखों में देखकर गंभीर अंदाज में पूछा, तुम्हें नकुल राजवंश ने वहां पहुंचाया था ना, ताकि फ्यूचर में तुम्हारे हिस्से की भी प्रॉपर्टी खुद रख सके। पिछले दिनों इशिका ने राजवंश हाउस में रहते हुए जिस तरह के हालातों का सामना किया था और सबके असली चेहरों को परखा था, इशिका के लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि बचपन में अभिमन्यु के साथ ये किसने किया होगा। अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, उनके अलावा ये घटिया हरकत और कौन कर सकता है। तब तक नक्श भी पैदा हो गया था, उनको डर था कि कहीं उनके बेटे की पोजिशन छिन ना जाए। अब तक वो इंसान बचा हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि माँ को ढूंढने के बाद हम सबसे पहले उन्हें उनकी गलतियों की सजा देंगे, इशिका ने सख्ती से कहा। वो नकुल को जाने नहीं दे सकती थी, वो तो किस्मत अच्छी थी जो अभिमन्यु बच गया था, वरना उसके साथ कुछ भी हो सकता था।
इसके लिए मुझे इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बस एक लीगल तरीके से बंटवारा ही काफी होगा उन्हें रोड पर लाने के लिए, अभिमन्यु ने जवाब दिया। इशिका उसकी बात से सहमत थी। हालांकि इशिका को जाने में देर हो रही थी, पर वो सब कुछ भूलकर अभिमन्यु के साथ बातें कर रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसका मन नहीं कर रहा था कि सच जानने के बाद वो अभिमन्यु से दूर हो जाए। इशिका और अभिमन्यु को आए हुए लगभग एक घंटा बीत चुका था। अभिमन्यु ने उसे याद दिलाते हुए कहा, हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है, तो अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, तुम आराम से अपना काम निपटाओ, तुम्हें जाने में देर हो रही होगी, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। उसकी जरूरत नहीं है, इशिका ने हल्के तरीके से कहा। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जो अभिमन्यु समझ नहीं पा रहा था। इशिका दूसरी तरफ गई और बैग से अपना मोबाइल निकालकर उसने युविका को मैसेज किया, मैं किसी काम में फंस गई हूँ, इस वजह से तरुण के घर नहीं जा पाऊंगी, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या तुम प्लीज रूही को उसकी स्कूल से पिक कर लोगी, हम रात को तुम्हारे घर पर मिलते हैं। युविका ने तुरंत ही उसे हाँ में जवाब दे दिया था। इनफैक्ट वो तो इस बात से खुश थी कि इशिका माया के घर नहीं गई थी। युविका को मैसेज छोड़ने के बाद इशिका ने अभिमन्यु की तरफ मुस्कुरा कर देखा। क्या करने का सोच रही हो मिसेज राजवंश, अभिमन्यु ने भौहें उठाकर पूछा। बस 5 मिनट दो, अभी आती हूँ, इशिका ने जवाब दिया और जल्दी से बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी। इशिका पहले फ्रेश हुई और उसके बाद में उसने सावधानी से अपना मास्क हटाकर फेस वॉश किया। उसने अपने बालों को अच्छे से पहले की तरह सेट कर लिया था। तैयार होने के बाद इशिका बाहर आई तो उसे देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई थी। अभिमन्यु को जेन्युइनली स्माइल करते हुए बहुत कम लोगों ने देखा होगा। इशिका अभिमन्यु के पास आती उससे पहले वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। अभिमन्यु ने इशिका को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया था। उसने अपनी नाक को इशिका के नाक पर रखते हुए धीमी आवाज में कहा, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने दूंगा, आज की रात तो बिल्कुल नहीं मिसेज राजवंश। अभिमन्यु की बात सुनकर इशिका का चेहरा लाल होने लगा। उसने नजरें झुकाकर हल्का मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर राजवंश, हमने कहा था हम एक दूसरे को टाइम देंगे, पिछली बार जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ था, ठीक है तो इस बार सब कुछ जानबूझकर होश में रहते हुए कर लेते हैं, अभिमन्यु ने मदहोश आवाज में कहा और फिर अपने होठों को इशिका की गर्दन पर रख दिया था। वो उसे काफी सॉफ्टली किस कर रहा था। वहीं इशिका की तो मानो सांसें थम सी गई थीं। अभिमन्यु की छुअन उसके शरीर में कंपन पैदा कर रही थी। अभिमन्यु, इशिका ने बिल्कुल धीरे से कहा, तो अभिमन्यु के होंठ इशिका के कान पर जाकर ठहर गए थे। अभिमन्यु ने धीमी हस्की वॉइस में कहा, हाँ बोलो मिसेज राजवंश, बैठकर बात करते हैं, इशिका ने अटकते हुए कहा। इशिका जो हमेशा से कॉन्फिडेंट थी, वो आज अभिमन्यु के सामने बेइंतहा नर्वस हो रही थी। ये देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट तैर गई। अभिमन्यु ने अपना चेहरा इशिका के सामने किया और उसकी चिन को ऊपर उठाकर कहा, लुक एट मी। इशिका ने अपनी नजरें ऊपर की। अभिमन्यु ने तुरंत उसके होठों को कैप्चर कर लिया था। वो उसे काफी सॉफ्टली किस कर रहा था। इशिका के हाथ अपने आप अभिमन्यु के गर्दन पर चले गए थे और एक नॉर्मल सा सॉफ्ट किस अब एक पैशनेट किस में बदल चुका था। अभिमन्यु बिना किस ब्रेक किए हुए उसे बेड पर ले गया। इशिका अभिमन्यु के नीचे थी। अभिमन्यु ने किस ब्रेक किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मे आई।
इशिका ने पलके झुकाकर अपनी सहमति जताई तो अभिमन्यु फिर से उसके करीब आया। उसने हल्के से इशिका के होठों को चूम लिया था और फिर वो इशिका के बॉडी को अडोर करने लगा। कुछ ही देर में उन दोनों के कपड़े फ्लोर पर बिखरे थे और वो दोनों अपनी प्यार भरी दुनिया में खोए हुए थे। जहां एक तरफ इशिका और अभिमन्यु अपनी दुनिया में मग्न थे तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के आगे राघव मित्तल खड़ा हुआ था। वो किसी के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। राघव ने गहरी सांस ली और कहा, पूरे 3 घंटे से आपका वेट कर रहा हूँ, अब तो बाहर आ जाइए। आज तक आपने उसे जितना इग्नोर करना था आप कर चुकी हैं, लेकिन अब तो वो आपके करीब आ गया है। क्या अभी आप अपनी बेटे की शक्ल तक नहीं देखना चाहेंगी अंजलि आंटी, जिसे आप पैदा होते ही छोड़कर चली गई थी। राघव की निगाहें ऑपरेशन थिएटर पर टिकी हुई थी। उसकी लाइट अचानक ही बंद हो गई थी, इसका मतलब था सर्जरी पूरी हो गई थी और राघव का इंतजार भी। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आप जानते ही हैं कि किसकी एंट्री होने वाली है। देखेंगे कि अभिमन्यु की मां अंजलि सब कुछ भूलकर अभिमन्यु को अपने पास रखने की कोशिश करेगी या नहीं, अभिमन्यु उसे माफ कर पाएगा या नहीं। जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए और पढ़कर रेटिंग और कमेंट कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं बहुत सारे सस्पेंस के साथ। वैसे आज का पूरा पार्ट अभिमन्यु और ऋषिका को डेडिकेटेड था।